अध्याय चार, भौतिक संसाधन विकसित एवं संभाव्य, फिजिकल रिसोर्सेस ऑफ इंडियन ओशन। महासागर प्राकृतिक संसाधनों के भंडार हैं। खनिजों के स्रोत की दृष्टि से महासागरों का दोहन इसकी संभावित क्षमता की तुलना में लगभग नहीं के बराबर हुआ है। इसके प्रमुख कारण सागर में खनिजों के निक्षेप की प्रकृति, संबंधित सूचनाओं का अभाव, वहां पाए जाने वाले कई उपयोगी खनिजों के दोहन में विकसित तकनीकी का अभाव तथा इस समय इन संसाधनों की बहुत आवश्यकता न होना है। निकट भविष्य में जैसे जैसे पृथ्वी पर जनसंख्या का भार बढ़ेगा, उसी गति से रसायन, खनिज, शक्ति तथा भोजन की मांग में वृद्धि होगी। महासागर के खनिजों का दोहन बढ़ेगा तथा आर्थिक दृष्टि से यदि ये महाद्वीपीय निक्षेपों की तुलना में अधिक सस्ते हो सकें तो इनका दोहन शीघ्रतर होगा। समुद्री जल स्वयं एक महत्वपूर्ण संसाधन है तथा 29,195 × 10⁻⁴ घन किलोमीटर आयतन का हिंद महासागर इस दृष्टि से अत्यंत संपन्न है। यद्यपि प्राकृतिक मृदु जल की अपेक्षा समुद्र के खारे जल से पेयजल बनाना अधिक महंगा है, तो भी शुष्क क्षेत्रों में नमक विहीन करने वाले यंत्रों की सहायता से पेयजल की प्राप्ति की जा रही है। समुद्री जल से रसायन अलग करके पेयजल बनाने की बहुत सी तकनीकें टपकाना, जमाना तथा अणु परिवर्तन हैं। इनमें टपकाने वाली पद्धति ही सबसे सस्ती पड़ती है। समुद्र का खारा जल अनेक रासायनिक तत्वों का घोल है। समुद्र के जल में घुले हुए खनिज पदार्थ कम या अधिक मात्रा में वर्तमान रहते हैं। प्रत्येक घन किलोमीटर समुद्री जल में 3.9 करोड़ मीट्रिक टन घुले हुए ठोस पदार्थ मिलते हैं, जिनमें इस समय केवल नमक, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन का ही अधिक मात्रा में शोषण हो रहा है। प्रति घन किलोमीटर समुद्री जल में लगभग $1 अरब के संभावित मूल्य के रासायनिक तत्व घुले रहते हैं, परंतु अत्यंत विरल केंद्रीकरण के कारण उनके शोषण की लागत उनके मूल्य से अधिक होने से बड़े पैमाने पर शोषण में प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अन्य बहुमूल्य सागरीय संसाधनों का निक्षेप समुद्री नीतल पर अथवा उसके नीचे होता है। सागरीय नीतल के नीचे गैस, पेट्रोलियम, गंधक, पोटाश तथा कोयले की संचित राशि मिलती है। सागरीय नीतल के ऊपर निक्षेपों में समुद्री जल के तलछट के रूप में एकत्रित खनिजों के अतिरिक्त बालू, कंकड़ पत्थर, शंख तथा घोंघे हैं। समुद्री तटीय भागों में पेट्रोलियम तथा गैस के कुएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वैसे अब तक केवल 230 मीटर की गहराई तक ही शोषण हो सका है। समुद्र विज्ञान शास्त्रियों ने तट से दूर सागरीय नीतल पर तलछट के रूप में जमा धातुकीय पिंडों, जिन्हें मैग्नीज पिंड कहते हैं, की खोज की है। इसमें औसतन 15-30% मैग्नीज, 15% लौह, 0.1-0.6% निकल तथा थोड़ी मात्रा में कोबाल्ट तथा तांबा होता है। इसकी रासायनिक बनावट ऐसी होती है कि इससे मैग्नीज निकालना अति कठिन होता है, पर आवश्यकता पड़ने पर इसका भी समाधान खोजा जा सकेगा। पृथ्वी के गर्भ में निहित कोयला तथा पेट्रोलियम कभी भी समाप्त हो सकते हैं, परंतु समुद्र के रूप में विद्यमान जल शक्ति कभी समाप्त नहीं हो सकती। सागरी जल में सौर ताप से प्राप्त गतिज, स्थैतिक तथा उष्मीय ऊर्जा तथा लहरों व ज्वारों से निहित ऊर्जा को जल विद्युत में परिवर्तित कर मानव उपयोग में लाया जा सकता है। सागर जल विद्युत के अक्षय भंडार हैं। यही नहीं, शक्ति के अन्य संसाधनों की तुलना में जल शक्ति सबसे सस्ती है तथा सरलता से उपलब्ध की जा सकती है। वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि संसार के विभिन्न सागरों में आने वाले ज्वार से लगभग 20 अरब अश्वशक्ति विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। कई पाश्चात्य देशों में इस प्रकार से उत्पन्न शक्ति का प्रयोग भी किया जाने लगा है। जल गति तथा सागर की विभिन्न गहराइयों में पाई जाने वाली तापमान की भिन्नता का लाभ उठाकर जल विद्युत उत्पन्न करने का सफल प्रयोग किया गया है। खनिज संसाधनों का विवरण महासागरों के 5 प्रदेशों के संदर्भ में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला सागरीय जल सी वाटर, दूसरा समुद्रीय बीच मैरीन बीच, तीसरा महाद्वीपीय मग्न तट कॉन्टिनेंटल सेल्फ्स, चौथा मुलायम पृष्ठीय अवसादों के नीचे स्थित संपीड़ित चट्टाने कंसोलिडेटेड रॉक्स अंडरलाइंग द सॉफ्ट सर्फिशियल सेडिमेंट्स, तथा पांचवा गहरे सागर स्थित नीतल डीप सी फ्लोर। पहला सागरीय जल सी वाटर। सागरीय जल में लगभग सभी प्राकृतिक तत्व घुले हुए हैं। सागर में विभिन्न स्थानों पर 60 घुले हुए तत्व पाए गए हैं। लगभग 140 वर्ग मील के क्षेत्र में 2.5 मील की औसत गहराई पर सागर में लगभग 330 मील घन मील जल की मात्रा पाई जाती है। सागरीय जल में विभिन्न तत्वों का औसतन 3.5% भाग घुला रहता है। इस प्रकार आयतन के अनुसार एक घन मील या भार के अनुसार 4.7 बिलियन टन के सागरीय जल में लगभग 166 मिलियन टन ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। सागरीय जल में 85% घुले हुए ठोस पदार्थों में सोडियम तथा क्लोरीन नामक दो तत्व प्रमुख हैं, जबकि सोडियम तथा क्लोरीन को मिलाकर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले 9 तत्व सागर में घुले संपूर्ण ठोस पदार्थों के 91% होते हैं। सागरीय जल में घुले लगभग 60 ज्ञात तत्वों में केवल निम्न 4 का व्यापारिक स्तर पर दोहन होता है। खाने के नमक के रूप में सोडियम तथा क्लोरीन, मैग्नीशियम तथा इसके कुछ यौगिक एवं ब्रोमाइन। नमक या मैग्नीशियम के शोषण में उप उत्पादों के रूप में कई कैल्शियम तथा पोटेशियम के यौगिक उत्पन्न हो जाते हैं। संपूर्ण जलमंडल का 98% भाग सागरीय जल है। सागरीय जल एक उत्कृष्ट समांगी होमोजेनियस तत्व है, जिसमें लगभग 96.5% जल तथा 3.5% नमक होता है। इसमें कणीय तत्व, घुली हुई गैसें तथा जैव मिश्रण कम मात्रा में पाए जाते हैं। घुले हुए नमक या सागर के पृष्ठीय जल की लवणता का विस्तार 50 डिग्री दक्षिणीय अक्षांश पर 33.99% से 25 डिग्री उत्तर 35.79% है। संपूर्ण सागरीय जल की औसत लवणता लगभग 35% है। उच्च लवणता 55% तक के क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय सागरों तथा उनके स्थलावृत्त विस्तारों जैसे लाल सागर में पाए जाते हैं। निम्न लवणता के क्षेत्र सागरीय जल में महाद्वीपीय भूखंडों की नदियों के मुहानों के तथा पिघले हिम के मिश्रण के क्षेत्र होते हैं। मृदु जल फ्रेश वाटर। साधारणतया ऐसे जल को जिसमें 1000 पार्ट से कम प्रति मिलियन घुले हुए क्षार हों मृदु जल कहे जाते हैं। मृदु जल के जो सामान्यतया खनिज नहीं माना जाता, सागरीय जल से निकाली जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु होने की संभावनाएं हैं। वर्तमान समय में बहुत से विकसित देशों में भी जल की अपर्याप्त प्राप्ति एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। अतः सागरीय जल से पेयजल की उपलब्धि एक आवश्यकता हो गई है। शुष्क देशों में जल की खपत 2-3 क्वार्ट्स प्रतिदिन से 20-30 क्वार्ट्स और अधिक बढ़ गया है। सिंचाई तथा औद्योगिकरण द्वारा अपने जीवन स्तर को उच्च बनाने के लिए विकासशील देशों को भी विशाल मात्रा में जल की आवश्यकता हो रही है। इस संदर्भ में अधिक जल आपूर्ति हेतु महत्वपूर्ण पग उठाए जा सकते हैं। प्रथम, अग्रिम वर्षों में हमें जल को अनावश्यक नष्ट करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना होगा। इसके लिए हमें अपने जल भंडारों, नदियों, झीलों व तालाबों को अनावश्यक दूषित करने से रोकना होगा। उपयोग किए गए जल का पुनर्उपयोग हेतु शुद्धिकरण करना होगा। बाढ़ से प्राप्त जल को बांध बनाकर सुरक्षित करना होगा तथा जल के औद्योगिक उपयोग में मितव्ययिता से काम लेना होगा। इस मार्ग पर कुछ देशों में अनुसरण प्रारंभ हो चुका है, जैसे फोंटाना, कैलिफोर्निया की कैसर इस्पात मिल रान ने पुनर्संचलन द्वारा अपनी जल की आवश्यकता 65,000 गैलन प्रति टन से घटाकर 14,000 गैलन प्रति टन कर लिया है। दूसरा महत्वपूर्ण पग विशाल पैमाने पर जल आपूर्ति में वृद्धि करने से होगा और ऐसा सागरों में विशाल मात्रा में उपलब्ध खारे जल को कम मूल्य में शुद्ध जल में परिवर्तित करने से ही हो सकता है। जल कितना शुद्ध हो यह उसके उपयोग पर निर्भर है। संयुक्त राज्य जन स्वास्थ्य के सेवा के मानक के अनुसार पेयजल में क्षारांश 1000 पार्ट्स प्रति मिलियन से भी कम हो सके तो 500 पार्ट्स प्रति मिलियन से भी कम होना चाहिए। कुछ औद्योगिक उपयोगों के लिए जैसे यंत्रों को ठंडा करने तथा सफाई करने के लिए अशुद्ध सागरीय खारे जल का प्रयोग संभव है, पर उच्च तापमान वाले बॉयलरों के लिए पूर्ण रूप से शुद्ध जल जिनमें क्षारांश 2-3 पार्ट्स प्रति मिलियन हो उपयुक्त होता है। खारे जल से शुद्ध जल में परिवर्तन हेतु उपलब्ध महासागरीय जल में लवणता सर्वत्र समान नहीं है। औसतन महासागरों के जल में लवणता लगभग 35,000 पार्ट्स प्रति मिलियन घुले हुए क्षार की आती है, पर फारस की खाड़ी व लाल सागर में यह 40,000 पार्ट्स प्रति मिलियन है। स्वाभाविक है कि ऐसे जल को शुद्ध करने का खर्च अपेक्षाकृत अधिक आएगा ही। वैसे इस समय नवीन तकनीकों के विकास के कारण खारे जल को शुद्ध करके नमक विहीन करने का खर्च 85 सेंट प्रति 1000 गैलन से भी कम आ रहा है। जल की अपर्याप्त उपलब्धि वाले क्षेत्रों में जहां स्थानीय जल खपत के उपयुक्त नहीं है, जल उपलब्ध जल को नमक विहीन करके प्रयोग किया जाता है। जैसे कुवैत में इस समय जल को शुद्ध करने वाले 50 से अधिक संयंत्र कार्यरत हैं। ऐसी आशा की जाती है कि अगले कुछ दशकों में न्यूक्लियर ईंधनों से संचालित संयंत्रों द्वारा खारे जल को विशाल पैमाने पर नमक विहीन करना अति सस्ता हो सकेगा। टपकाने की विधि, डिस्टिलेशन, सौर ताप की सहायता से वाष्पीकरण, इलेक्ट्रोडायलिसिस, ओस्मोसिस, जमाना तथा वाष्पीकरण अथवा सागरीय जल को ऐसे घोल में परिवर्तित करना जिसमें क्षार घुलनशील न हो आदि विधियों का प्रयोग कर जिस विधि में कम खर्च आए तथा शीघ्र व काफी मात्रा में जल का शुद्धिकरण हो सके, उस विधि द्वारा विश्व में शुद्ध जल की आपूर्ति भविष्य में की जाती रहेगी तथा सागरीय जल का यह अक्षय संसाधन इसके लिए अशुद्ध क्षारीय जल अनंत काल तक प्रदान करता रहेगा। सागरीय जल की संरचना, कंपोजिशन ऑफ सी वाटर। सागरीय जल में बड़ी संख्या में तत्व, घुली हुई गैसें, जैव यौगिक, ट्रेस संख्या में वर्तमान कणीय तत्व जल की भौतिक विशेषताओं को बहुत प्रभावित नहीं करते, परंतु उनका जैविक एवं भू रासायनिक महत्व बहुत अधिक होता है। प्रमुख घटक, मेजर कंपोनेंट्स, 8 आयनों तथा अधिकतर संयुक्त रूप से बोरिक एसिड को मिलाकर सागरीय जल में कुल 99.95% लवण पाया जाता है। इसका मान निम्न तालिका में दिया गया है। क्लोरीन केंद्रीकरण 18.98%, कुल क्षार 55.04 प्रतिशत, सोडियम 90.54, कुल क्षार 30.61 प्रतिशत, सल्फेट केंद्रीकरण 2.46 प्रतिशत, कुल क्षार 7.68 प्रतिशत, मैग्नीशियम 1.27 प्रतिशत, कुल क्षार 3.69 प्रतिशत, कैल्शियम केंद्रीकरण 0.49 प्रतिशत, कुल क्षार 1.16 प्रतिशत, पोटेशियम 0.38 कुल क्षार 1.10 प्रतिशत, बाइकार्बोनेट 0.14 कुल क्षार 0.41, ब्रोमाइन केंद्रीकरण 0.06 प्रतिशत, कुल क्षार 0.19 प्रतिशत, बोरिक एसिड 0.02 प्रतिशत, कुल क्षार 0.07 प्रतिशत, कुल योग 34.45 प्रतिशत, इसका कुल क्षार 99.95 प्रतिशत। धरातलीय अपवाह पोषक तत्वों, जैव पदार्थों तथा क्षारता एवं औषधीकरण की प्रक्रिया में परिवर्तन से आयात अनुपातों में परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप लवणता में के माप में गलती आ सकती है। गौण घटक, इस समूह में उपयुक्त 8 तत्व एवं बोरिक एसिड घटकों को छोड़कर शेष 52 तत्व एवं गैसें आती हैं। इन तत्वों को 2 भागों, मध्यम केंद्रीकरण तथा ट्रेस या सूक्ष्म मात्रा में वर्तमान तत्वों में बांटा जा सकता है। सागर जल में प्रमुख आयनों की संरचना लगभग तालिका के समान ही रहती है, पर इस समूह के तत्वों, विशेषकर सूक्ष्म मात्रा में वर्तमान तत्वों में भिन्न सागरीय वातावरण में भिन्नता आना निश्चित है। अतः अलग सागरीय वातावरण के जल का विश्लेषण अलग करना चाहिए। मध्यवर्ती केंद्रीकरण के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट कॉन्सेंट्रेशन, सागर में मध्यवर्ती केंद्रीकरण के 9 तत्वों में 3 गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा आर्गन एवं 3 प्रमुख पोषक तत्व नाइट्रोजन, सिलिकन तथा फास्फोरस भी सम्मिलित हैं। इस समूह के तत्वों के केंद्रीकरण तथा उनके संभावित प्रकारों का वर्णन किया गया है। मध्यवर्ती केंद्रीकरण के तत्वों में फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं सिलिकन पोषक तत्व हैं, जिनका वर्णन आगे दिया जाएगा। इनके अतिरिक्त मध्यवर्ती केंद्रीकरण के अन्य तत्वों में ऑक्सीजन का वर्णन भी आगे सागर में घुली गैसों के संदर्भ में दिया जाएगा। मध्यवर्ती केंद्रीकरण के अन्य तत्वों में लिथियम, आर्गन, स्ट्रॉन्शियम तथा आयोडीन का वर्णन प्रस्तुत है। लिथियम, जीवों के संदर्भ में लिथियम का कोई ज्ञात कार्य नहीं है, न ही यह भू रासायनिक तौर पर सक्रिय है तथा वितरण में यह संरक्षी है। आर्गन, सभी निष्क्रिय गैसों में आर्गन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यह सागर जल में स्थानिक तापमान तथा वायुदाब पर लगभग संतृप्त स्थिति में पाया जाता है। इस गैस का अन्य गैसों से अनुपात का उपयोग सागर में उनकी स्थिरता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। स्ट्रॉन्शियम को एक संरक्षित तत्व माना जा सकता है। इसका महत्व इस समय न्यूक्लिय विखंडन प्रतिक्रिया के फलस्वरूप प्रदूषण समस्या के कारण बढ़ा है। सागर जल में निवास करने वाले बहुत से जीवों की हड्डियों में स्ट्रॉन्शियम के उच्च केंद्रीकरण के कारण इस तत्व को रेडियो एक्टिव संदूषण का कुछ बहुत महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। जीवों के कवचों में अनुपात जल के अनुपात के समान होता है। आयोडीन, सागर जल में आयोडीन आयन के रूप में पाया जाना चाहिए, पर जीवों तथा पौधों द्वारा आयोडीन के शोषण के कारण अधिकतर ही पाया जाता है, जिसमें ऊष्मागतिक संतुलन अवरुद्ध हो जाता है। सूक्ष्म घटक माइक्रो कंपोनेंट्स, यद्यपि सागर के जैव भू रसायन शास्त्र में सूक्ष्म घटकों का बहुत महत्व है, इनका केंद्रीकरण एवं रासायनिक स्वरूप अक्सर संदिग्ध रहता है। अधिकतर प्रदेश में कम के विश्लेषण से अधिक समस्या आती है। इनमें से कुछ प्रमुख सूक्ष्म घटकों का सागर जल में केंद्रीकरण निम्न है। एल्यूमिनियम, सागर जल में एल्यूमिनियम 1 मिलीग्राम से 1 मिलीग्राम प्रति लीटर तक मिलता है। स्थिति एवं गहराई के अनुसार इसका केंद्रीकरण बदल सकता है, परंतु 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक मान सागर तटीय क्षेत्रों, जहां स्थलीय अपवाह का प्रभाव होता है, नहीं पाया जा सकता है। मैंगनीज, पैलेजिक अवसादों के लौह मैंगनीज खनिजों में यह बहुतायत में पाया जाता है। लौह, सागरीय जल में लौह विभिन्न ऑक्सीकृत अवस्था में विभिन्न भौतिक स्वरूपों में वर्तमान रहता है। तांबा तथा जिंक, मध्यवर्ती गहराइयों में इस तत्व का 20 से 80% केंद्रीकरण पाया जाता है, जबकि ऊपरी तथा गहरे जल में इसका केंद्रीकरण कम होता है। अन्य ट्रेस तत्वों का सागरीय संदर्भों में विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है, क्योंकि बहुत कम प्रतीकों का ही अध्ययन हुआ है। जैव संगठक, ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सागरीय जल में जैव संगठकों के यौगिकों, प्रकार, वितरण तथा महत्व के संदर्भ में वैज्ञानिक गंभीर प्रयास कर रहे हैं। जैव कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन, सागर के फाइटोप्लैंकटन से संपन्न जल में मिश्रित जैव कार्बन, जैव कणिकाएं कार्बन से 7-8 फैक्टर अधिक होती हैं, जबकि गहरे जल में 1000 फैक्टर अधिक पाया जाता है। खुले सागरों में संपूर्ण जैव कार्बन 0.2 से 2.7 मिलीग्राम प्रति लीटर पाया जाता है। स्थलावृत क्षेत्रों में उच्च मान काले सागर में 3.3 मिलीग्राम लीटर पाया जाता है। इसका क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर वितरण समांगी नहीं होता, परंतु न्यूनतम ऑक्सीजन के क्षेत्र में कार्बन न्यूनतम होता है। उच्च फाइटोप्लैंकटन उत्पादकता के जल में जैव कार्बन का उच्चतम विकेंद्रीकरण होता है। जैव फास्फोरस, रिचफर्ड ने 1963 में हिंद महासागर में जैव फास्फोरस के वितरण का अध्ययन किया है। 112 से 114 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा की दक्षिणी सीमा, विषुवत रेखीय अपसरण तथा उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा व विषुवत रेखीय विपरीत जलधारा के मध्य की सीमा 200 मीटर जल की पृष्ठीय परत में जैव फास्फोरस की सर्वाधिक उपस्थिति पाई गई है। अंटार्कटिक मध्यवर्ती जल जल में 1000 मीटर की गहराई पर अत्यधिक मात्रा में फास्फोरस के केंद्रीकरण के विपरीत लवणता का निम्नतम केंद्रीकरण पाया गया है। सागरीय जल में पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स इन द सी वाटर, बृहत तत्वों तथा संरक्षी कंजर्वेटिव धातुओं के अतिरिक्त सागरीय जल में कुछ घटकों का केंद्रीकरण होता है, जो सागरीय फाइटोप्लैंकटन, सागर में भोजन श्रृंखला का आधार की वृद्धि हेतु आधारभूत महत्व के होते हैं। ये घटक हैं घुलनशील अजैविक फास्फेट 0.1 से 3.5 मैगटॉम्स प्रति घन मीटर, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनियम तथा हाइड्रेटेड सिलिकेट आयन इन सागरी खाद्यों का महासागर की पृष्ठीय परत में ही उपभोग हो जाता है, जहां प्रकाश की पहुंच के कारण फोटोसिंथेसिस, जिससे वृद्धि नियंत्रित होती है, क्रिया होती है। मुख्यतया जैविक मलबे तथा घुलनशील जैविकों के बैक्टीरियाई क्षय से अजैविक फास्फोरस तथा नाइट्रोजन का पुनर्जनन होता है तथा सिलिकेट का टेस्टों के घुलने से होता है। पुनर्जनित पोषक तत्व विक्षोभों एवं प्रक्षुब्ध भंवर के विसरण तथा ऊर्ध्वाधर संवहन द्वारा ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। पोषकों का सागर में वितरण। पोषकों की विशेषता गहरे सागर में चार परतों तलों में केंद्रीकरण है। पहला ऊपरी तल, जिसमें केंद्रीकरण कम होता है तथा विशेष गहराई तक अपेक्षाकृत समान होता है। दूसरा तल, जिसमें गहराई बढ़ने के साथ केंद्रीकरण शीघ्रता से बढ़ता है। तीसरा अधिकतम केंद्रीकरण का 500 से 1700 मीटर के मध्य का तल। चौथा तली की मोटी परत, जिसमें गहराई के साथ फास्फेट तथा नाइट्रेट के केंद्रीकरण में परिवर्तन नहीं के बराबर होता है। सिलिकेट अवश्य काफी बढ़ सकता है। सागरीय जल से प्राप्त खनिज। हिंद महासागर में पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों का अध्ययन अभी नहीं किया गया है। 1942 में स्वर्ड्रप इत्यादि ने डिस्कवरी द्वारा किए गए निरीक्षणों के आधार पर ऑक्सीजन के वितरण का अध्ययन किया। 1960 में इवानेनको तथा गुबिन ने 1956 में ओप क्रूज द्वारा किए गए निरीक्षणों के आधार पर कुछ रासायनिक तत्वों की विवेचना प्रस्तुत की। किसी भी अन्य द्रव की अपेक्षा जल में सर्वाधिक तत्वों को घुलाने की क्षमता होती है। पृथ्वी पर उपलब्ध लगभग सभी तत्व संभवतः सागरीय जल में घुले हुए हैं। यद्यपि अभी सागरीय जल का अध्ययन बहुत गहराई से नहीं हो सका है, तो भी अब तक लगभग 57 तत्वों का समावेश पाया गया है। शेष तत्व नगण्य मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें जल का भाग सर्वाधिक महत्वपूर्ण लगभग 96.5% है। पृथ्वी पर कच्चे माल का सबसे बड़ा क्षेत्र 350 मिलियन घन मील आयतन वाला महासागर है। 35,000 पार्ट्स प्रति मिलियन घुले हुए ठोस पदार्थों की दर से प्रत्येक घन मील सागरीय जल 4.7 अरब टन जल में ठोस पदार्थ 165 मिलियन टन होंगे। हिंद महासागर का संपूर्ण आयतन 70.05 मिलियन घन मील है। 165 मिलियन टन ठोस पदार्थ प्रति घन मील की दर से ठोस पदार्थों का कुल भार 11.56 मिलियन टन होगा। सागरीय जल में घुली हुई गैसें, गैसेस इन द ओशन वाटर। सागरीय जल में घुली हुई गैसों से तात्पर्य जल में घुली हुई अतिरिक्त गैसों से है, न कि जल की रचना में प्रयुक्त गैसों के परमाणुओं जैसे हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैसों के संयोग से जल बनता है में पाई जाने वाली गैस से है। संयुक्त गैस व घुली हुई गैस में इस प्रकार अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। मछलियां घुली हुई ऑक्सीजन द्वारा जीवित रहती हैं, न कि जल के निर्माण में प्रयुक्त ऑक्सीजन द्वारा। सागरीय सतह पर बहने वाली वायु द्वारा ही सागरीय जल में गैसों का प्रवेश हो पाता है। वायु की रचना में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 7.9% आर्गन तथा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित अन्य गैसों का योग होता है। ये गैसें सागरीय सतह से मिश्रण तथा विसरण डिफ्यूजन द्वारा संपूर्ण सागरीय जल में घुल जाती हैं। पौधों तथा कीटाणुओं के जैविक क्रियाकलापों द्वारा इनका केंद्रीयकरण बदलता रहता है। वायुदाब में वृद्धि, लवणता व तापमान में कमी से गैसों की घुलनशीलता में वृद्धि हो जाती है। वायु के अतिरिक्त कुछ अन्य स्रोतों से भी घुली हुई गैसों की मात्रा में वृद्धि होती है, जैसे सागरीय नीतलों में कुछ नाइट्रोजन कीटाणुओं के क्रियाकलापों के फलस्वरूप भी उत्पन्न होता है। पोटेशियम के रेडियो एक्टिव क्षय से आर्गन गैस की उत्पत्ति होती है। यूरेनियम तथा संबंधित तत्वों के रेडियो एक्टिव क्षय से रेडॉन तथा हीलियम गैस की उत्पत्ति होती है। सागरों में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसें अधिक पाई जाती हैं। ऑक्सीजन सागरी जल में घुली हुई संभवतः सबसे महत्वपूर्ण गैस ऑक्सीजन है। जीवों के श्वास हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं तथा श्वास क्रिया में इसका उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन के केंद्रीयकरण पर ही जीव जंतुओं का क्षय निर्भर करता है। सागर में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा 0 से 9 मिलीलीटर प्रति लीटर सागरीय जल में पाई जाती है। वायु के निरंतर संपर्क तथा पौधों के कारण सागरीय सतह पर ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। वास्तव में जब प्रकाशीय कटिबंध में फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया अधिक होती है, सागरीय जल में ऑक्सीजन भी अति प्रचुर हो जाता है। नाइट्रोजन अपेक्षाकृत प्रतिक्रिया विहीन गैस है, जिसका ऑक्सीजन की भांति सागरीय जल में वातावरण के संपर्क से 8 से 15 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से मिश्रण पाया जाता है। घुली हुई नाइट्रोजन का सागर में वितरण इसकी घुलनशीलता, लवणता तथा धाराओं में मिश्रण द्वारा नियंत्रित होती रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड सागरी जल में मिश्रित कार्बन डाइऑक्साइड जैविक प्रक्रियाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पौधे तथा जीव जंतु श्वास क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तथा पौधे फोटोसिंथेसिस में इसका उपयोग करते हैं। जैविक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप सागर में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता। घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड का केंद्रीकरण 40 से 45 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से होता है। अन्य गैसें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन तथा रेडॉन भी वातावरण द्वारा सागरीय जल में समाविष्ट होती हैं। मिश्रण व विसरण द्वारा सागर तली तक नीचे पहुंचती हैं। तापमान तथा लवणता द्वारा इनकी घुलनशीलता नियंत्रित होती है तथा चूंकि ये निष्क्रिय होती हैं, अतः जैव रासायनिक प्रक्रियाओं से सम्मिलित नहीं होती।